नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन केसरी स्वागत करती हूँ आपका कहानी दिल से दिल तक में। सबसे पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मेरी स्टोरीज को सुनते हैं, उसे लाइक करते हैं। मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है गजदंत और इसकी लेखिका है शिवानी। शिवानी हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है और इनकी कहानी इतनी रोचक होती है कि अगर आपने एक बार पढ़ना इसको शुरू किया तो बिना पूरी पढ़े आप इसे छोड़ नहीं सकते। यार दिलदार, तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, इस कहानी का शीर्षक है गजदंत। ये कहानी भी कुछ इसी तरह से ही है।
इस कहानी का मुख्य पात्र गिरीन्द्र
पैसे की लालच में एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए सुनते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष की महिमा आज इतने वर्षों के बाद समझ पाई हूं। चाहने पर निश्चय ही श्रीपति प्रिया कामदेव के कठिन बाणों को व्यर्थ सिद्ध कर सकती है। ऐसा नहीं होता तो क्या उस विकट प्रणय ज्वर का रोगी गिरीन्द्र घातक स्मरगरल पान कर भी लक्ष्मी का वरहस्त थामते ही ऐसे लहलहा उठता? उस वर्ष शायद नियति की तर्जनी का आदेश ही उसे मेरे पास उसकी नई नौकरी का पहला अवकाश बिताने खींच लाया था। एक तो गर्मियों में नैनीताल का प्रत्येक ग्रह अतिथियों से भरा रहता है, उस पर मेरा बंगला तो उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु था। अयार पाटा के प्राकृतिक कुहासे से घिरे अपने उस आवास की स्मृति अब भी बीच बीच में मुझे विहल कर उठती है। एक और चाइना पीक की उत्तम चोटी, दूसरी ओर जगमगाती बत्तियों के साथ किसी अज्ञात बंदरगाह पर लंगर डाले जहाज सा खड़ा बिरला विद्या मंदिर, सुदूर नैना देवी के मंदिर की ठुनकती घंटियां और अयार की वो अनोखी बयार मेरे आत्मीय स्वजनों को प्रतिवर्ष खींच लाती। उस बार भी मेरे यहाँ पूर्ण कुंभ जुटा था, इसी से मैंने निम्मी को अपना हाथ बटाने बुला लिया था। मैं जब भी उसे बुलाती उसकी माँ उसे सहर्ष भेज देती, तुम्हारे पास 10 दिन रह लेती है तो लड़की का चेहरा निखर आता है, घर पर तो 2 जून खाना भी नहीं जुटता भागी को। निम्मी की माँ तारा मेरे दूर के संपर्क की ममेरी बहन थी। कभी 7-8 थान गाय भैंस मकान दुकान सब कुछ था, किंतु धीरे धीरे उसके पति का विलासी स्वभाव उसे पथ की भिखारिणी बना गया था। जब पिता ने पुत्र की गतिविधि देखी तो उसे बांधने सुंदरी तारा से फेरे फिरवा चाय की दुकान खोल दी, किंतु दुकान पर भी रसप्रिया ग्राहकाओं की ही भीड़ जुटने लगी। बिना पैसों के ही ग्राम की तरुणी विधवाओं और अनब्याही किशोरियों के कंठ सिक्त होने लगे और एक दिन तारा के वृद्ध ससुर के पीड़ित हृदय के साथ साथ पति की दुकान भी बैठ गई। फिर उसके मनचले पति ने डेली पैसेंजरी का सर्वथा मौलिक धंधा अपनाया। नित्य अल्मोड़ा जाता, गुड़ चाय साबुन मिश्रित थैलों में लाता और घर पहुंचाता। पर कुछ ही महीनों में फिर नारी की नित्य नवीन फरमाइशों ने पुरुष के दुर्बल चित्त को पराजित कर दिया। टिकुली रंगीन फुंदे और सुवासित केश तेल पुनः महाऔदार्य से निशुल्क वितरित होने लगा। 2 पुत्रियों का पिता बन जाने पर भी उसके निरंकुश स्वेच्छारी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु जितने ही अकर्मण्य मेरे बहनोई थे उतनी ही कर्मठ थी मेरी बहन तारा। उसी ने अमानवीय धैर्य से बंधक धरे खेत छुड़ाए, बैलों की जोड़ी ली और रिक्त खूटे से एक अधेड़ सी गाय भी पाली।
उसी की बड़ी पुत्री निम्मी अब 17 वर्ष की हो चुकी थी।
देखने में ढोलक लेकर सोहर बनने गाने में चौक पूर अल्पना देने में वो बेजोड़ थी, किंतु स्वास्थ्य की पूंजी थी अत्यंत सीमित।
तुमने बड़े पुण्य किए हैं तारा, मैं कहती लड़की की यही गढ़न रही हो 7-8 साल तक तुम इसके विवाह की चिंता से दूर रह सकती हो।
ठीक कह रही हो दीदी, वो एक लंबी सांस खींच करके। पर हमारे समाज को तो तुम जानती ही हो,
पराई अनब्याही बेटियों की उम्र तो उनके जिहाग्र पर रहती है। जितने दिन भी निम्मी मेरे पास रहती, मैं गृह कार्य से जीवन मुक्ति सी पा लेती। मेरे उठने से भी पहले वो न जाने कब उठ नहा धो चाय का पानी चढ़ा देती। कौन अतिथि कलई का गर्म गिलास थामता है, किसी ट्रे का आडंबर पसंद है, सब उसे कंठस्थ रहता। इधर उस सबकी बेटी निपटती, उधर वो टोस से अंडे उबाल नाश्ते का आयोजन कर डालती। उस पर्व को भी कुशलता से निपटा, स्वयं ही सब्जी काट छौंक दाल चढ़ा चावल बीनने बैठ जाती। जब हम खाना खा लॉन में पहाड़ की छड़ स्थाई धूप का आनंद लेने बैठते, वो अपना कोई अधभुना स्वेटर या मोजा लेकर सी के खटखटाने लगती। लगता था विधाता ने उस परिश्रमी किशोरी का एक एक पल पूर्व नियोजित कर उसे सिखा पढ़ा दिया है। उसी वर्ष उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। इसी से परीक्षा के परिश्रम ने कमनीय चेहरे की कांति को मलिन कर दिया था। फिर भी उजड़ जाने पर भी दिल्ली दिल्ली ही थी। उस साल ठंड बेहद थी और उसके पास पहाड़ी ऊन का एक खुरदरा सा कार्डिगन ही था। मैंने उसे अपना एक काला शॉल निकाल कर
उसे ही ढाप ढूंप और चूल्हे के पास रोटी सेकने बैठी तो मैं उसे देखती ही रह गई।
शॉल का जीर्ण कलेवर भी जैसे उसकी लावण्य धुती से नवीन हो उठा था। इधर मैं जानबूझकर ही उसे जनेऊ शादी मुंडन में निमंत्रणों में साथ ले जाती थी। उसकी माँ ने मुझसे बार बार कहा था कि कहीं भी कोई सुपात्र दिखे तो उसे सूचित कर, उसका रूप निश्चय ही देखने वालियों का कुतूहल जागृत कर देगा। होता भी ऐसा ही है, महिलाओं के नाना प्रश्न मुझे बींध देते हैं। कौन है जी ये, किसकी बिटिया है? और जहां मैं उसके अभागे जनक का नाम बताती, एक साथ ही कुतूहल में उठी बीसियों घृघटियां नीचे छुप जाती। कौन नहीं जानता था उस रूप पिपासु आदमखोर को? कॉर्बेट वाली क्रूर नरभक्षी से क्या वो किसी अंश में कुछ कम था? एक बार तो सुना बाड़े खोला की दोमनियां उसकी तीखी नाक ही काटने जा रही थी। किसी दयालु पुरोहित ने बीच बचाव कर उसे छुड़ा लिया था। उस निरीह किशोरी का विवाहाकाश गगन मेघ खंडों से आक्षण था, पर तब ही उस धूम केतु के क्षणिक प्रकाश पुंज ने उस दुर्भेद अंधकार को चीर मुझे चौंधिया दिया था। उसका सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य, बेचारी को एक दिन नजले ने पकड़ लिया, फिर हो गया निमोनिया। गिरीन्द्र ने उसी वर्ष अपनी हाउस सर्जनी का कार्य संभाला था। नया नया मुल्ला था, शायद इसीलिए नमाज में दोहरा होता चला गया। कभी उसे सुई लगाता, कभी टेम्परेचर लेता, कभी अकारण ही पसलियां खटखटाता और कभी बाहों का सहारा दे उसे ग्लूकोज पिलाता। मामी ये बेहद एनेमिक है, लखनऊ जाते ही मैं इनके लिए विटामिन की गोलियां भेजूंगा, वो कहता और मैं मुंह छिपाकर हंस लेती। जी में आता कह दूं, अब तुझे लखनऊ पहुंचकर गोलियां नहीं भेजनी होगी गिरीन्द्र, देखता नहीं तेरा स्पर्श पाते ही तो अदृश्य विटामिनों का अबीर उसके आलम को रंग जाता है। इससे बढ़कर भला संसार का और कौन सा विटामिन हो सकता है? सातवें दिन बुखार उतर गया और फिर एक दिन वो बड़े उत्साह से कहने लगा, मामी जी कहे तो इन्हें थोड़ा घुमा लाओ, टहलने से थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा। मेरे अधरों पर यत्न से छिपाए जाने पर भी छलक आए स्मित को देख वो सहसा खिसी आ गया। हाँ हाँ, मैंने कहा, घूम अनिमी, शॉल ओढ़ कर जाना, समझी? और जब वो मेरे ही घातक आदेश का पालन करती, काले शॉल में अपना सफेद चेहरा ढाप गिरीन्द्र के साथ पगडंडी उतरने लगी, तब स्वयं मेरी अंतरात्मा ही मुझे धिक्कार उठी। छी छी, ये कैसा बचपना था मेरा, सब कुछ जान पूछ कर भी मैं अभागिनी को सब्ज बाग क्यों दिखा रही थी? क्या मैं अपनी महत्वाकांक्षिणी ननद को नहीं पहचानती थी? अपने इस इकलौते सुदर्शन पुत्र को लेकर वो तो इसके जन्म से ही उसके और अपने भविष्य का सुनहला जाल बुन रही थी। प्रतिष्ठा, सत्ता, वैभव और कीर्ति के छलना में आकर्षण का मोतियाबिंद अब पूर्ण रूप से उसकी आंखों की ज्योति छीन चुका था। जो अपनी एक मध्यम वर्गीय क्लर्क से ब्याहे जाने की व्यथा को, अपने तेजस्वी सौंदर्य की पराजय की मर्मांतक वेदना को, किसी समृद्ध परिवार की राजकन्या को बहू बनाकर भूलना चाहती थी, उसे क्या मेरी दरिद्र भतीजी का सौंदर्य बांध पाएगा? फिर क्या जीवन के लंबे अनुभव ने मुझे ये नहीं सिखा दिया था कि कर्तव्य और प्रेम के कठिन संघर्ष में कोई विरला ही प्रेम का कंठ का कीर्ण पथ चुन पाता है, और फिर भी जानबूझकर मैं उस कान कौवे बादशाही बालक की भांति उन्हें ढील देती रही, जो ये जानकर भी कि उसकी डोर बहुत छोटी है और उसे शीघ्र ही पतंग नीचे खींचनी होगी, ढील पर ढील दिए चला जाता है। हुआ वही जो ऐसी अवस्था में होता है, डोर सहित पतंग भी मेरे हाथ से निकल गई। दोनों नित्य एक ही जनशून्य पगडंडी का सूत्र पकड़कर उतरते और दिन डूबे लौटते। एक दिन मैं खिड़की पर खड़ी थी, कोहरे और सांझ के धुंधलके में वे दोनों शायद मुझे देख नहीं पाए। निम्मी का हाथ पकड़ गिरीन्द्र उसे ऊंची ऊंची पगडंडी फंदा रहा था। अचानक उसने न जाने क्या कहा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इधर गिरीन्द्र की छुट्टियां खत्म हो चली थी और जाने के पहले दिन तो दोनों ने जैसे नाक ही काट कर जेब में डाल ली थी। रात के 8 बजे लौटे तो मेरा चेहरा क्रोध से तमतमाया देख निम्मी चुपचाप चौके में घुस गई। मैं कुछ भी नहीं बोली, किंतु मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था जैसे भी हो जाने से पहले छोकरे से ठीक ठाक पूछ ललिता को चिट्ठी लिखनी ही होगी, किंतु मेरे उससे कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठा। रात को वो स्वयं ही मेरे कमरे में आ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो कभी टेढ़ी और कभी सीधी मांगे निकाल निकाल उनका अस्तित्व मिटाने लगा। स्पष्ट था कि इस व्यर्थ केश सज्जा के माध्यम से ही मुझसे कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा है। क्या बात है गिरिंदी, क्यों तुम्हारी माँ को लिख दूं? मतलब क्या लिख दूं कह रही हो? उसके अनजान बनने की चेष्टा, उसके आनंदी स्मित के साथ ही उसकी नुकीली मूछों को आद्र कर गई। बनो मत भांजी, कल जब निम्मी तुम्हें कोर थमा रही थी, लज्जा समर्पण और असहायता की त्रिवेणी का संगम ना देख पाती, ऐसी मूर्ख नहीं हूं मैं, समझे? आखिर 20 साल से अपने उपन्यास कहानियों में तुम जैसे सैकड़ों जोड़ों को अपनी लेखनी से हाँक कर चला चुकी हूँ। पर सुनो गिरीन्द्र, तुम्हारी माँ को मैं जानती हूँ, वो कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। क्यों? उसका दयनीय चेहरा देख मुझे तरस आ गया। इसीलिए कि तुम्हारे दुर्भाग्य से निम्मी के पिता के वैभव का ही नहीं चरित्र का पड़ला भी चुका हुआ है। तो तुम क्या सोचती हो, मैं पैसे के लिए विवाह करूंगा? वो तुनक गया। मैं क्यों सोचूंगी गिरीन्द्र, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जन्म से पहले ही ऐसा सोच लिया है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने एक नहीं अनेक बार मुझसे कहा है कि जब भी बहू लाएंगी ठोक पीट कर ऐसे ग्रह की कन्या लाएंगी जहाँ लक्ष्मी स्थिर आसन लगाकर विराजमान।
तुम अम्मा को सब समझा कर लिख दो ना मामी।
क्या समझा कर? मैंने जानबूझकर ही उसे छेड़ दिया।
यही सब?
और वो फिर लड़कियों की भांति लजाता लाल पड़ गया। मेरा पत्र और गिरीन्द्र शायद एक ही डाक गाड़ी से निकले होंगे। उत्तर भी मुझे समय से ही मिला था, किंतु पत्र की कटु भाषा में यदि जलाने की शक्ति होती तो मैं निश्चय ही झुलस जाती। पत्र क्या था जिसे शायद जानबूझकर ही मुझे अपने दुस्साहसी प्रस्ताव सहित भस्म करने भेजा गया था?
छी छी, तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी भाभी। और कोई नहीं मिला तुम्हें? वो नट्टे रमेश की बिटिया रह गई थी मेरे लिए। तुम्हें तो पता है अभागे ने शादी से पहले मुझे कैसी कैसी नंगी चिट्ठियां लिख मारी थी, और तुम कहती हो गिरीन्द्र को लड़की बेहद पसंद है। अरे अपने ये प्रणय प्रसंग अपने कथानकों तक ही सीमित रखो, समझी?
मैंने गुस्से में भुनभुनाकर चिट्ठी फाड़ दी। 3 महीने तक मुझे फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली। 4वें महीने वो तार मिला, फौरन चलिया। मेरे नंदोई रक्तचाप के पुराने मरीज थे, कहीं कुछ स्ट्रोक तो नहीं पड़ गया? मैं भागती भागती गई।
मैं जानती थी तुम अवश्य आओगी,
ललिता ने मुझे बाहों में भर लिया।
बड़ी ऊंची जगह से गिरीन्द्र का रिश्ता आया है, कलकत्ते के पास रहते हैं वर्षों से, प्रवासी पहाड़ी परिवार है, लाखों का कारोबार है, संबद्ध समृद्धि सब एकदम मुझे, उस पर एक इकलौती पुत्री है। सोचा मैं लड़के को लेकर गई तो सहज रूप से खुल नहीं पाएगा, तुम्हें मानता भी बहुत है।
एक ही सांस में सब कुछ उगल ललिता पूरी तरह हांफने लगी थी, न चाहने पर भी व्यंग से मेरे अधर तिल मिला उठी। मानता तो बहुत है, मानता तो ऐसी बेरुखी से मेरी दरिद्र भतीजी का रिश्ता फेर देता।
अरे उफ, लगता है तुम अभी भी वो सर्वेलियन युवा की बिटिया की बात भूली नहीं हो। फिर वो कौन तुम्हारी सगी भतीजी है जी?
क्षण भर की पूर्व की स्नेह सौजन्य में मेरी ननद सहसा कलह प्रिया रजचंडी बन गई।
सोचा था तुम बंगाल में बहुत रही हो, उनके अदब कायदे जानती हो। फिर एक बात और भी थी।
क्या?
लड़की देखने में साधारण है, कुछ अंग दोष भी है शायद।
वो फुसफुसाई।
क्यों, लंगड़ी है या कानी?
तुम क्या सोचती हो जी, मैं क्या गिरिंद्र की सौतेली माँ हूँ? उसके लिए कानी नूरी लड़की लाऊंगी?
वो तो सुना है कि जरा दांत ऊंचे हैं, इसी से तुम्हें बुलाया था। अरे कहानियां लिखती हो और नायिका का ऐसा सुंदर वर्णन करती हो, निश्चय ही।
वाह, खूब कही। कहानियां लिखती हूँ तो क्या अपनी लेखनी से तुम्हारी भावी पुत्रवधु के ऊंचे दांत भी भीतर ठूंस सकती हूँ? मेरी लेखनी केवल काल्पनिक नायिका का ही सौंदर्य संवारती है ललिता, यथार्थ को संवारने की शक्ति विधाता ने मुझे नहीं दी।
अरे मेरा मतलब तुम समझी नहीं।
उसका गला सचमुच ही रुंध गया।
अरे मैं चाहती हूँ अपनी भाषा में उसे समझा बुझा कर ये कह दो कि लड़के बहुत अच्छे हैं, सूरत शक्ल कितने दिन टिकती है। अब अपनी किशोरी मौसी को ही ले लो ना, जवानी में कैसा नूर था चेहरे पर जब अधेड़ हुई तो मक्खियां भी नखने लगी।
हटो जी, मुझे तो अभी अपनी मौसी उतनी ही सुंदर लगती है, मैंने कहा। पर अंत तक नाना तर्क वितर्कों के भंवर जाल में डगमगाती भांजे की भाग्य तरणी की कर्णधार बनी मैं ही उसे ठाकुर ग्राम ले गई थी। कलकत्ता से 100 मील की दूरी पर बसा ठाकुर ग्राम नाम से ही ग्राम था, वैभव में किसी भी शहर के वैभव को फीका कर सकता था। सियालदा में जोशी जी अपनी इम्पाला गाड़ी लेकर स्वयं हमारी अगवानी करने को उपस्थित थे। उनकी वेशभूषा, उनका आंग्ल आचरण एकदम त्रुटिहीन था। पग पग पर हमें अपने अभिजात वैभव पद प्रतिष्ठा से अवगत कराते। वो जब अपनी कोठी के अहाते में पहुंचे तो दिन डूब चुका था। झाड़ फानूसों की झनकती घंटियों के साथ लौह श्रृंखलाओं में जकड़े उनके खूंखार एल्सेशियन की भौ भौ, चमकती वर्दी में काले चेहरों पर पॉलिश से किए सतर खड़े उनके संथाल बैरे बटलर देख हम दोनों बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। इस कमरे में मैंने आपके रहने की व्यवस्था की है, ये कह उन्होंने जिस जादुई कमरे का चमकता द्वार खोला उसका वैभव हमें फिर चौंधिया गया। कमरा क्या था, किसी 5-स्टार होटल का सजा सवरा कक्ष था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने आतिथ्य में उसने सामान्य सी भी त्रुटि नहीं रहने दी थी। अभी तक हम गृह स्वामिनी से नहीं मिले थे, पर जब गृह स्वामी की ही ऐसी परिमार्जित रुचि थी तो स्वामिनी भी निश्चय ही ठसकेदार होंगी। कैसी ही संपन्न रुचि क्यों ना हो, जहां तक व्यक्तित्व का प्रश्न था गिरीन्द्र किसी भी कसौटी में खरा उतर सकता था, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी। किंतु कन्या यदि अपने पिता पर पड़ी होगी तो निम्मी के कमनी चेहरे की स्मृति बड़ी सुगमता से स्वयं उसका भविष्य संवार लेगी। मैं मन ही मन प्रसन्न हुई थी। जोशी जी के चमकते जूतों से लेकर डिनर जैकेट, वॉयल शर्ट का स्टिफ कॉलर, सब कुछ बेजोड़ था, किंतु उसके गौने कद और चेहरे ने ऐसे उनकी वैभव और वेशभूषा पर झाड़ू फेर कर रखती थी। एकदम ही बौना कद, तंग पेशानी, इतनी बारीकी से तराशी गई दाढ़ी की ठुड्डी एकदम ही नंगी लगती, चेहरे को अश्लील बना गई थी। माथा संकुचित तो था ही, उस पर कुटिल आंखों के सानिध्य ने उसे और छोटा बना दिया था। मोटे अधर ऊपर से पतली होने पर भी नीचे से सहसा फैल गई नासिका के कुछ कुछ फूले नथुने देखने वाले को सहमा देते थे। कुल मिलाकर चेहरा एक विलासी काम क्रूर व्यक्ति का ही लगता था। उस प्रौढ़ संसारी व्यक्ति का लौह पंजा किसी भी कलाई को एक बार पकड़ सहज में छोड़ने वाला पंजा नहीं था। उनकी सौसिस सी पृथुल अंगलियों की अदृश्य पकड़ में अपनी निरीह दुर्बल चित्त भांजे की कलाई को थर थराते मेरी अनुभव दृष्टि ने देख लिया था। जोशी जी हमें बड़े ही स्नेहपूर्ण सौजन्य से अपने खाने के कमरे में ले गए और घुमा घुमा कर अपना अपूर्व संकलन दिखाने लगे।
सुंदरवन में मारी गई नील गाय का सिर दीवार पर टंगा काला ढूंगी के गुलदार का भूई पर चरम बुंदेलखंड के गहन वन में उनके अचूक निशाने का शिकार चीतल और सौराष्ट्र के किसी अरण्य से लाद कर लाया गया अरना भैंसा। और ये है मेरा सेलर, एक अर्ध चंद्राकार शीशम के अधर में त्रिशंकु से लटके टुकड़े पर सभी अदा से बाहर टिका वो कांच की अलमारी में बंद बोतलों की ओर गर्व से देखकर मुस्कुराने लगे। एक एक कर उन्होंने इनसे हमारा विधिवत परिचय भी करा दिया। ये बोतल मेरे एक राजनीतिक मित्र मेरे लिए लाए थे। गत वर्ष एमपी दल का नेतृत्व करने रूस गए थे। ये क्रिमिंडी मिन तो हमने अपनी समधिन के लिए सेट कर रखी है। और ये कॉनैक तो मैंने बेटी के पहले जन्मदिन की पार्टी से छिपा कर रख ली थी। आइए पहले मिसेस जोशी से तो मिला दूं। अरे भाई कहाँ हो, जिनकी कहानियों की तुम उपासिका हो वो आज तुम्हारे सौभाग्य से सशरीर यहाँ उपस्थित हैं। एक लेसदार झाड़न से हाथ पोंछती मिसेस जोशी नम्रता से अभिनंदन की मुद्रा में दुहरी होती हमारी ओर बढ़ी तो उनकी असंख्य ठुड्डियों के बीच से उनका चेहरा ढूंढने में मुझे कुछ समय ही लगा था। कठिन भीमोदर उनकी हर पदचाप के साथ यत्न से जमाई गई जेली की भांति हिल रहा था। ये महिला कैसे उठ बैठ पाती होगी, मैं यही सोच रही थी कि सहसा उनकी किसी दूध पीती बच्चे की सी आवाज ने मुझे दूसरा धक्का दिया। उस विशाल शरीर के अनुपात में किसी पिद्दी किसी ची ची के स्वर ने हम दोनों को एक साथ चौंका दिया। से किसी उत्तम देवालय की छत से लटकी कोई नन्ही सी घंटी खनकी।
आइए आइए पहले खाना खा ले, एक तो ठंडा हो जाएगा। ए जो गोनू आलोटा नीबिया दे तो रे।
उन्होंने अपने एक भुजंग से काले मुच्छंदर दैरे को आदेश दिया और खट से बत्ती बुझ गई। मेज पर लगी मोमबत्तियों के प्रकाश में जोशी दंपत्ति ने फिर हमें अपने अपूर्व व्यंजनों की सुगंध से बेहोश तक कर दिया। मेरा बचपन कैशोर्य रियासतों में बीता है। उस दिन उन्हीं विस्मृत दरबारी भोजों की स्मृति मुझे विहल कर उठी थी। हमारे पीछे खड़े दक्ष बैरे जैसे चतुर्भुज की सी चार चार बाहों से हमें परिवेशन करते जा रहे थे। सहसा बड़े ही नाटकीय ढंग से किसी पूर्व अभ्यास के सूत्रधार की भांति जोशी जी ने पुकारा। एक साथ ही हम दोनों पर्दे की ओर उठी। मुझे तो आज भी यही लगता है कि कमरे की बत्ती भी उस दिन पुत्री के व्यक्तित्व के दुर्बल पक्ष को रहस्यमय ढंग से छिपाने के लिए ही बुझाई गई थी। और उस कैंडल लाइट डिनर के आयोजन में जोशी जी का चतुर मस्तिष्क बहुत पहले ही अभिमन्यु का चक्रव्यूह रच चुका था। कर अपनी विलंबित विदेशी मीन से हमें घायल करती बेबी माता और पिता के बीच बैठ गई। उसे आने और कुर्सी पर बैठने में मुश्किल से 2 सेकंड लगे होंगे, किंतु उस संक्षिप्त अवधि में भी हमने उस विचित्र शरीर की ज्यामिति पाँच ली थी। लड़की ने माँ का स्वास्थ्य और पिता का कदर चेहरा तो पाया ही था, किंतु उन अधरों को चीरते फाड़ते जो 2 लंबे दांत सीधे आकर हम दोनों के कलेजे में धस गए थे वो निसंदेह विधाता का सर्वथा मौलिक प्रयोग था। मैंने एक से एक मोटी लड़कियां देखी हैं, किंतु वो मोटापा स्वयं अपने में एक अनोखी मिसाल था। कसे गए ब्लाउज में मांस की अनावश्यक परतें कंठ के नीचे गलग्रह बनी लटक रही थी। उधर बैल की सी भाव शून्य आंखें पिता के से ही सेम के बीज के जैसे नथुने और भयावह गजदंत। मैं चेष्टा करने पर भी दोबारा उसकी ओर आंखें नहीं उठा पाई। उसके आते ही पूरे कमरे को एक मनहूस चुप्पी ने घेर लिया। दीवार पर टंगा रवि वर्मा अंकित दक्षिणी सुंदरी का भव्य तैलचित्र, सौराष्ट्र का अरना भैंसा, सब कुछ निस्तेज हो उठे। मेज पर सवरे एक एक व्यंजन में जैसे मक्खियां तैरने लगी। मुझसे एक कौर भी न निकला गया। मैंने कनखियों से काक दृष्टि से देखा, मेरा भांजा भी रुमाली रोटी का रोल सा बना आलू दम के आलू से बिलियर्ड सा खेल रहा था। मेरा मन अकारण ही मत मयूर सा नाच उठा। अब निश्चय ही मेरी निम्मी का मैदान साफ था।
पर आश्चर्य भी हुआ था कि इस युग में जहां बदसूरत कपोल ठुड्डी, यहां तक कि कुरूप नासिका को भी प्लास्टिक सर्जरी से संवारा जा सकता है, जहां विज्ञान ने दिल की नहीं दिमाग के आरोपण की भी संभावना से त्रस्त मानव को आश्वस्त कर दिया है, वहां जोशी जी की पुत्री को इन मनहूस गजदंतों से मुक्ति कैसे नहीं दिला पाए। थोड़ी ही देर में बेबी खाने से खेल कर उठ भीतर चली गई। मैंने देखा कि उस बुलंद इमारत का आगा और पीछा समान रूप से अनाकर्षक था। उधर चाणक्य भी अपनी शिखा की बंधी गांठ खोलने लगा था।
आओ बेटा।
गिरीन्द्र को उन्होंने अपनी तर्जनी के आदेश से उठा लिया।
तुम्हें अपना क्लब दिखा लाए, जरा देख तो लो कि चाहने पर मनुष्य कैसे कैसे जंगल में भी मंगल रचा सकता है।
कमरे की मनहूस चुप्पी में गुदगुदे कालीन को व्यर्थ ही अपने पैर के अंगूठे से कुरेदती मैं कन्या की जंदाइनी के साथ अकेले रह गई।
बहन, आज अच्छा दिन है, अब तुम अपनी स्वीकृति दे दो तो हम भी रोली तिलक ले आए।
मैं संभलती कि इससे पूर्व ही उस व्यवहार कुशल महिला की गुदगुदी मांसल हथेली में मेरा हाथ डरे सहमे कबूतर सा फड़फड़ा रहा था। इसके दांत, वो एक पल को कुछ सकुचा कर फिर दबंग बन गई और निसंकोच धारा प्रवाह वाणी में उन विलक्षण दांतों का परिचय देने लगी।
हाँ हाँ, कुछ ऊंचे हैं, पर लड़की मेरी गाय से सीधी है बहन, कोई 10 चूती मार भी दे तो चू जाना करे। वैसे इसके पिता इसे सबसे प्रसिद्ध डेंटल क्लिनिक में भी दिखा चुके हैं, पर दुर्भाग्य से कोई भी इन्हें तोड़ने को राजी नहीं हुआ। कहते हैं इन अभागे दुश्मन दांतों की जड़ें इसके दिमाग से जुड़ी हैं। हो सकता है तोड़ने पर वो मानसिक संतुलन ही खो बैठे।
देखिए, मैंने गंभीर स्वर में कहा, ये बात तो गिरीन्द्र ही बता सकता है, उसी से पूछ ले। हो सकता है मेरे सामने संकोच वश कुछ कह नहीं पाए, आप क्लब ही जाकर उससे पूछ आइए ना। मैंने बड़े कौशल से फिर अपने गले का फंदा काटकर दूर फेंक दिया।
ओह धन्यवाद, कैसी विलक्षण सूझ है आपकी, तभी तो आपकी कहानियां इतनी दिलचस्प लगती है मुझे। मैं अभी जाती हूँ। क्यों बहन जी, बेबी को भी ले जाऊं?
हाँ हाँ, ले जाइए ना, शायद खाने की मेज पर ठीक से देख ना पाया हो। मेरा तीखा व्यंग तेल से सने पात्र पर जल की निरीह बूंद सा ही ढलक गया। थोड़ी ही देर में माँ बेटी की बौने सरकसी चोपड़ों किसी जोड़ी को विदा होते देख मैंने निश्चिंता की सांस ली। पर मैं क्या जानती थी कि उसे माँ के साथ भेजने में मेरा कुटिल अभिप्राय जान लेने को छोड़ी गई मूठ की ही भांति स्वयं प्रेरक को भी निष्प्राण कर देगा। बड़ी देर के बाद जब उत्फुल परिवार क्लब से लौटा तो वराहदंती बेबी का निर्विकार भाव शून्य चेहरा भी प्रसन्नता से तमक रहा था। जोशाइन ने उसे मेरे पैरों पर लगभग ठकेल ही दिया था।
पैर छू इनके, आज से ये तेरी मम्मिया सास है।
मैं एक क्षण को स्तब्ध रह गई। तब क्या भागा जानबूझकर ही आंखें बंद कर अंधे कुएं में पड़ा था? रात्रि के एकांत में अगल बगल सोने पर भी मैं फिर उससे एक शब्द नहीं बोल पाई थी। कौन कहता है कि देवता भी स्त्री चरित्र को नहीं बांच सकते। पग पग पर गिरगिटी रंग बदलने वाले पुरुषों पर हमारे रस सिद्ध कवि गुड़ी नित्य ऐसी कोई उक्ति क्यों नहीं लिख गए। दूसरे ही दिन हमें जाना था। इसी से बड़े तड़के ही से जोशी दंपति ने हम पर उपहारों की चांदमारी सी कर दी। हीरे की अंगूठी, मखमली थैली में सोने की मोहरे, घर भर के लिए बंगाल की प्रणामी प्रथानुसार भारी भरकम साड़ियां, बाग बाजारी रसगुल्ले और भीम नागी संदेश, स्वयं अपनी ही भारी ऑर्गेंजा की असली जरी को सहलाती मैं अपने छत विछत चित्त की वेदना भी एक क्षण के लिए भूल बिसर गई थी। विवाह की तिथि भी उन्होंने उसी दिन निश्चित कर तीसरे ही महीने विवाह निपटा दिया था। गिरीन्द्र मेरी इकलौती ननंद का इकलौता पुत्र था, इसी से ये कैसे हो सकता था कि मैं ना जाती। मैं गई, पर उस आनंद और महोल्लास के बीच काले शॉल में लिपटे डब डबाए सफेद चेहरे की स्मृति मुझे रह रहकर व्याकुल कर उठती थी। मुख में कलकत्ते का स्पंजी रसगुल्ला दबा रहने पर भी स्वाद बीच बीच में स्वयं ही कड़वा हो उठता था। जी में आता था थूक दूं, जैसे कोई कड़वी कैप्सूल कंठ ही में अटक अपनी कड़वाहट का जहर मेरी पूरी स्वास्थ्य नली में घोल गई थी। बहू आई और साथ में आया समुद्र मंथन से निकला रत्नों का स्फूर्तकार अंबार। टेलीविजन, गाड़ी, स्टीरियो, इंपोर्टेड फ्रिज, डिनर सेट, चांदी की कटलरी और सोने का डिकेंटर, उन सबकी चकाचौंध के बीच अधरों से बाहर लटके गजदंतों को देखने की ना किसी को लालसा थी और ना ही अवकाश। कोई साड़ियों की जरी तौल रही थी, कोई कंठ हार के हीरो पर न्योछावर हो रही थी, कोई अनोखे फ्रिज का चिकना कपाट खोल ऐसी ललक से भीतर झांक रही थी जैसे नई बहू का घूंघट उठा सलोना चेहरा पहली बार देख रही हो। ललिता को तो दम मारने की फुर्सत ही नहीं थी। इधर उधर भागती, मिठाई के डिब्बे संभालती, वो पुराने दमे के मरीज की भांति हांफती जा रही थी। अरे ललितो, उनकी जिठानी ने दूर से अपने भारी कंठ की बंदूक दागी। अरे बूंदी के लड्डू तो डबल सेज के हैंगे रे, जरा संभल के तोड़ियो, कहीं उनमें भी मोहर ना भरी हो तेरे समधी ने। साथ ही रतजगे की रतनारी उनीदी बीसियों आंखें चाकी और पन्ना घोड़ी गाए गए। अध बैठे कंठों के संवेद कह कहे से कोहबर गूंज उठा। बेहया गिरीन्द्र, नई बहू के सोने के गुच्छे में फ्रिज की चाबी पिरो रहा था। एक बार भी उसने सिर उठाकर मेरी ओर नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं समझ गई कि बेचारा स्वयं ही अंतरात्मा के चाबुक की सड़ासड़ मार से तड़प रहा है। मैंने सामान कार में रखवाया। चलने लगी तो ललिता ने हाथ पकड़ लिया। हाय, एक दिन तो और रुक जाती, बहू का पूरा सामान भी तो नहीं दिखा पाई तुम्हें। उनके स्वर में स्नेह का लवलेश भी नहीं था। उस कंठ का अहंकार भी एक बार फिर मेरे कटे घाव पर नमक पुरक गया। जो देखने लायक चीज थी उसे तो देख ही लिया ललिता, अब सामान देख कर क्या करूंगी। काले शॉल वाला चेहरा मेरे जिहाग्र पर बैठ जैसे स्वयं मुखरा बना प्रतिशोध ले रहा था। अरे हाँ, तुम्हें तो बताना ही भूल गई। दरपुदीत स्वर अब उसने शायद जान बूझ कर ही आस पास खड़ी महिलाओं को सुनाने के लिए और ऊंचा कर दिया था। अरे द्वार चार में बहू के नाम का 1,25,000 के बीमे का कागज भी रख दिया था समधी ने। अच्छा, चलते चलते फिर मैंने भी अपनी दरिद्र भतीजी के अपमान का पूरा पूरा बदला ले ही लिया। ये कहावत तो आज तक सुनी ही थी ललिता कि मरा हाथी भी 1,25,000 का होता है। आज उसे चरितार्थ होते भी देख लिया, मैंने कहा और देशी उस्तरे की धार से अपनी ही व्यंग्यात्मक घातक हंसी से ननद को घायल कर तेजी से सीढ़ियां उतर गई। तो देखा अपने दोस्तों, पैसे की ताकत को। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? क्या एक इंसान की बाहरी और भीतरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती? पैसा लेकर व्यक्ति शादी तो कर लेता है, लेकिन पूरी जिंदगी वो उसे एक बोझ की तरह ढोता रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। अगली कहानी के साथ फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।